नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार दे चलो, जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके 1-8 पद में जिस गद्यांश का व्याख्या करना टीकाकारों के लिए और प्रभु के भक्तों के लिए बहुत कठिन था और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपने अध्ययन को अध्याय 6:9 से आरंभ करते हैं, परंतु उन पिछली बातों को भी हम दोहराएंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हमें से हर एक के जीवन के लिए जिसे आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन में से सीखें। आज जब हम आपके वचन में से सुनते हैं, सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें ताकि आज का यह अध्ययन का समय हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में देखा कि डॉक्टर जे वी रॉयल ने अपने विचारों को रखा, परंतु अब मैं अपनी समझ में ढालकर उसे आपके सामने में रख रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लेखक यहां उद्धार के विषय चर्चा नहीं कर रहा है, वह उद्धार प्राप्त मनुष्यों को पत्र लिख रहा है। उन्होंने ज्योति पाई और वे स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, वे पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। लेखक का अभिप्राय प्रकट करता है कि लेखक प्रतिफल की चर्चा कर रहा है, यह प्रतिफल उद्धार का परिणाम है। पद 6 में वह कहता है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें फिर मन फिराव के लिए नया बनना अनहोना है। वह उधार नहीं मन फिराव की बातें कर रहा है। मन फिराव एक ऐसा काम है जो परमेश्वर ने विश्वासियों से करने को कहा है। उदाहरण के लिए अप्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 और 3 में सातों कलिसियाओं को लिखे संदेश को पढ़ें। वह प्रत्येक कलिसिया को मन फिराव के लिए कहता है। विश्वासियों के लिए यह उसका संदेश है। अतः इब्रानियों की पत्री का लेखक उद्धार के फल की चर्चा कर रहा है, उद्धार के मूल की नहीं। पद 9 पर फिर से ध्यान दें। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। मेरे प्रियो, वह मसीही जीवन के फल और उससे प्राप्त प्रतिफल की चर्चा कर रहा है। अतः अभिप्राय यह है कि वे प्रतिफल से वंचित न हो, इसलिए उन्हें अति सावधान रहना है। यह एक खतरा है। पौलुस कहता है कि हमारे कर्म तो सब जल जाएंगे और हमारे पास प्रतिफल पाने को कुछ भी नहीं रहेगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 11 से 15 पद में वह कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या पूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मेरे मित्रों, हर एक विश्वासी का काम आग से परखा जाएगा। आग जला देती है। प्रभु की सेवा में आप जो भी करते हैं वह आग में जलाकर देखा जाएगा। उदाहरण के लिए, जब प्रचारकों के वे सब पत्र जिसमें वे मन फिराव करने वालों की लंबी सूची भेजते हैं, जब आग में डाले जाएंगे तब आग धधक उठेगी। यदि हमारी सेवा दैहिक थी तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जो नहीं थी, काट फूस और घास आग में भस्म हो जाएंगे। मेरे प्रियो, एक दिन प्रभु यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने प्रत्येक विश्वासी को खड़ा होना पड़ेगा। काश मैं विश्वासियों को समझा पाता कि वह अनुभव मन भावन नहीं होगा कि प्रभु यीशु हमारी पीठ थपथपा कर कहे, तूने 10 वर्ष तक एक भी आराधना नहीं छोड़ी, तू कितना अच्छा है। प्रभु यीशु इससे कहीं अधिक गहराई में परखेगा। वह देखेगा कि आपके जीवन में फल है या नहीं। क्या आप उसके अनुभव और ज्ञान में आगे बढ़े हैं? क्या आपका जीवन उसके लिए किसी काम का रहा है? क्या अन्य मनुष्यों के लिए आशीष का कारण आप बने हैं? मेरे मसीही मित्रों, मेरा न्याय उद्धार के लिए नहीं, वरन उद्धार पाने के बाद प्रतिफल के लिए होगा। अब देखिए, वह मसीही जीवन के फल को बताता है। पद 7 और 8 में कहता है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उगाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और स्थापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। यदि विश्वासी का जीवन फल लाता है तो वह परमेश्वर से आशीष पाता है। यदि उसमें कांटे और ऊंट कटारे हैं तो वह त्याग दिया जाएगा। मेरे प्रियो, तीतुस जैसे युवा प्रचारक को पत्र लिखते समय पौलुस ने यही कहा था कि हम कर्मों से नहीं उसके अनुग्रह से उद्धार पाते हैं। 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार। इस पद को पढ़कर कोई सोचेगा कि पौलुस को प्रतिफल नहीं मिलेगा, परंतु उसी अध्याय का पद 8 आप सुने, लिखा है, यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। उद्धार में भले कामों का योगदान नहीं है, परंतु जब कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा, तब भले काम सर्वोच्च महत्व के हो जाते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप विश्वासी हैं तो यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप मसीही जीवन जिएं। मेरे कॉलेज के दिनों में मनोवैज्ञानिक एक विषय पर चर्चा करते थे, किसका अधिक महत्व है, पैतृक गुण या वातावरण। मेरे शिक्षक के पास इसका बड़ा अच्छा उत्तर था, आपके जन्म से पूर्व पैतृक गुण महत्वपूर्ण है और आपके जन्म के बाद वातावरण। हम इस विचार को अपने अध्ययन में ले आते हैं। नया जन्म पाने से पूर्व आपके कर्मों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए वे अस्वीकार्य हैं। यशाया के पुस्तक 64 अध्याय उसके 6 पद में आपके कर्मों को मैले चिथड़े कहा गया है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर चिथड़ों को जमा करे? वह पापियों को ग्रहण करता है, परंतु तब जब वे मसीह में उद्धार पाते हैं। उद्धार पाकर हम नया जन्म लेते हैं और परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, और पत्रस कहता है कि हम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें उद्धार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। मेरे मित्रों, उद्धार पाने के बाद आपको संसार में भले कामों द्वारा दिखाना है कि आप परमेश्वर के लिए मुक्त करा लिए गए हैं। अतः मसीही जन के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, इसी का तो न्याय किया जाएगा। यदि एक विश्वासी बच्चों के समान व्यवहार करे और समस्याएं उत्पन्न करे जिसके कारण लोग मसीह के पास आने की अपेक्षा मसीह से दूर हो जाएं, तो उसे प्रतिफल नहीं मिलेगा। उसके लिए तो प्रभु यीशु के आगमन पर लज्जा ही लज्जा होगी। आगे हम देखते हैं, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। मेरे प्रियो, ये पद हमारे अध्ययन का केंद्र है। यहां भटक जाएं शब्द है, जिस यूनानी शब्द का अनुवाद किया गया है उसका वास्तविक अर्थ है गिरना। जैसे लिखा है कि प्रभु यीशु गतसमनी में गिरकर प्रार्थना करने लगा, अतः इसे विश्वास का त्याग कहना उचित नहीं है। धर्म शास्त्र में गिरने वालों के अनेक उदाहरण हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 32 पद में प्रभु यीशु पत्रस से कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, अर्थात तू गिर ना जाए, ठोकर ना खाए। पत्रस को हानि हुई, परंतु वह विश्वास से अलग नहीं गया था। यहूना मार्कुस एक और उदाहरण है, वह पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा में शोचनीय रूप से चूक गया था और पौलुस ने उसके मामा के अधिक आग्रह करने पर भी उसे साथ नहीं लिया। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 37 से 39 पद में लिखा है, पौलुस ने उसे साथ ले जाना अच्छा ना समझा, परंतु परमेश्वर ने उसे नहीं त्यागा, पौलुस भी अपनी सेवा के अंत समय में प्रकट करता है कि उसने मरकुस को गलत समझा था। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4:11 में हम पढ़ते हैं, जो उसका अंतिम पत्र है वह लिखता है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा में वह मेरे बहुत काम का है। मेरे प्रियो, पद को फिर से पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा कि लेखक उद्धार के संबंध में नहीं, मरे हुए कामों से मन फिराने के बारे में चर्चा कर रहा है। लुकार के सुसमाचार 3:8 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही कहता है, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव का अर्थ कुछ आंसू बहा देना नहीं है, इसका अर्थ है पूरी तरह पलटकर प्रभु यीशु की ओर मुंह कर लेना, अर्थात अपने जीवन की दिशा बदल देना। मित्रों, बहुत से यहूदी विश्वासी अब भी मंदिर में बलिदान चढ़ाते थे। प्रभु यीशु से पूर्व बलिदान उसका प्रतीक थे, परंतु प्रभु यीशु ने जब क्रूस पर जान दे दी तो उसके बाद पुराने नियम की आज्ञाएं समाप्त हो गई थी। ये लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर थे जो यीशु के क्रूसीकरण के एक दिन पूर्व वे मंदिर में बलि चढ़ाने गए थे, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा थी, परंतु अब उनके लिए बलि चढ़ाना उचित नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं सदा का बलिदान हो गए थे। यदि आज आप बलि चढ़ाकर लहू बहाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु की बलि निरर्थक थी और आपको आज भी पापों के लिए बलि चढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है, और आपको उसकी मेल बलि, उसकी मृत्यु, उसकी मुक्ति में विश्वास नहीं है। किसी ने कहा है, हम अपने जीवन से या तो प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं या उसे ताज पहनाते हैं। आज हम या तो विश्वास का जीवन व्यक्त करें या प्रभु यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ा दें। यदि हम यह सोचें कि हमें व्यवस्था पालन करना आवश्यक है तो यह एक गंभीर बात है। पद 6 पर फिर से ध्यान दें, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। यहाँ शब्द यदि अलग से जोड़ा गया है, परंतु यदि उसे शर्त रहित काम में लिया जाए तो कोई समस्या नहीं है। मेरे प्रियो, उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना क्यों है? स्मरण रखें कि हम उद्धार के फल की चर्चा कर रहे हैं। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके फिर पाप में जीवन जिए तो यह अत्यधिक गंभीर बात है। आप आत्मिकता में शिशु होकर उसे नकार देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं और लकड़ी, घास और फूस का ढेर लगाते जाते हैं। 1 कुरिन्थियों की पत्री 3:11 में पौलुस दूसरे शब्दों में इसी बात को कहता है, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या पूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आप कौन सी सामग्री काम में ले रहे हैं? क्या आप काठ, घास और पूस बहुतायत से काम में ले रहे हैं? आज कलीसियाई सेवाओं में ऐसे कामों की कमी नहीं है। हम संस्थाएं बनाने में बहुत अच्छे हैं, परंतु हमारा जीवन क्या परमेश्वर के लिए काम का है? क्या स्वर्ग के निवासी आपकी ओर संकेत करके कह सकते हैं, मैं आपके जीवन और गवाही के कारण आज यहां हूं, या मैं स्वर्ग में इसलिए हूं कि आपने मुझे परमेश्वर का वचन सुनाया है? ओह, हम काठ, घास और फूस का रद्दा रखने से सावधान रहें। प्रसंगवश घास के ढेर और हीरे की अंगूठी में महान अंतर है। आप घास के ढेर में हीरे की अंगूठी को खो सकते हैं, क्योंकि वह बहुत छोटी होती है। मुझे खेद है कि बहुत लोग दिखाने के लिए घास का ढेर लगा रहे हैं। मुझे एक प्रभु के दास ने कहा, मैं आत्महत्या का सा काम कर रहा हूँ, मुझे इस वर्ष पिछले वर्ष से अधिक अच्छी रिपोर्ट देना है, हमें कलीसिया की सदस्यता बढ़ाना है, दान एवं दशमांश बढ़ाने हैं। काश यह प्रभु का दास धर्मशास्त्र पढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक समय दे तो वह परमेश्वर के वचन की शिक्षा देगा और अनेक लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे और मसीह के साथ संबंधों में बढ़ेंगे। प्रत्येक मनुष्य के काम आग में परखे जाएंगे, आग में लकड़ी घास और फूस का क्या होगा, सब भस्म हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, यही लेखक कह रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में प्रभु यीशु कहता है कि वह सच्ची दाखलता है और हम डालियां हैं। पद 7 से 8 में वह कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि बहुत सा फल लाओ। मेरे प्रियो, वह चाहता है कि हम बहुत फल लाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 6 पद में वह यह भी कहता है कि जो डाले फल नहीं लाती उसके साथ वह क्या करता है। लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं, वह उसे वहां से हटा देगा। मेरे मित्रों, मैं आज परमेश्वर को यही करते देख रहा हूं। मैं पिछले समय को देखता हूं तो पाता हूं कि बहुतों ने काट घास और फूस का ढेर लगाया है। मैंने सोने का रद्दा रखने वालों को भी देखा है। पिछले कई वर्षों से मैं इस सेवकाई में हूं। विश्वासी जनमान्य मनुष्य हैं, परंतु वह भ्रष्टाचार में पड़ गए हैं। उसकी गवाही मसीह की न रही, परंतु वह फिर भी जनप्रिय एवं प्रभावशाली मनुष्य है। वह मेरा एक अच्छा मित्र भी है, परंतु मैं मरणोपरांत उसके समान प्रभु यीशु की उपस्थिति में जाना नहीं चाहूंगा। मैं एक अति रूपवान प्रभु के दास को भी जानता हूं जो अपनी पत्नी का विश्वास योग्य नहीं है। उसने किसी दूसरी स्त्री के कारण अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, परंतु वह अब भी शिक्षा देता है। उसकी शिक्षा घास का ढेर लगा रही है। अंत में सब कुछ भस्म हो गया। यहां भी उसने कुछ नहीं छोड़ा। ओह, हमें अपने मसीही जीवन के प्रति कैसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हम अपने सामर्थ्य में मसीही जीवन नहीं जी सकते। प्रभु यीशु दाखलता है। जी हाँ, हमारा जीवन, हमारे फल उसी से उत्पन्न होते हैं। हम उसमें से उगने वाली डालियां हैं। उसमें रहकर ही हम फल का आनंद ले सकते हैं, अर्थात हम फल ला सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 4 पद में प्रभु यीशु कहता है, मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। जी हाँ, वे जितना चाहें उतना आंसू बहा लें, परंतु उनकी गवाही खराब हो गई है। उदाहरण के लिए मैं एक ऐसे प्रचारक की घटना सुनाता हूँ। उसने सेवा का त्याग करके अपना ही प्रचार कार्य आरंभ किया था, परंतु वह असफल रहा क्योंकि उसकी गवाही खराब थी। वह किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध रखता था। उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। मैं उसके उद्धार पर संदेह नहीं करता। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकता है, परंतु सब व्यर्थ हो गया। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर की संतान हैं और यदि आप शैतान की संतान का सा व्यवहार करें तो आप परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको परिपूर्ण उद्धार दिलाने आया था और आपको पवित्र आत्मा के अंतर्वास द्वारा उसके लिए आत्मा से भरा जीवन जीने में सामर्थ्य बनाने आया था। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। भूमि की उपज मनुष्य के लिए आशीष है, परंतु यदि भूमि कांटे उगाए तो वह श्रापित है और उसमें आग लगाई जाती है। यहां निकम्मी का जो मूल यूनानी शब्द है उसका अर्थ है अस्वीकृत। यही शब्द पौलुस पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 27 पद में लिखता है, जब वह कहता है, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं, प्रभु की उपस्थिति में स्वीकार ना किया जाऊं। प्रभु यीशु कहे, तेरा जीवन एक गवाही होना था परंतु वह नहीं था। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु के लिए नहीं जी रहे हैं तो आपको यह सुनना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें सच का सामना करना है। पद 9 जो मुख्य पद है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। लेखक के कहने का अर्थ है, मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि तुम परमेश्वर के लिए जियोगे। तुम मसीह में नया जन्म पाकर शिशु ही नहीं बने रहोगे, परंतु तुम उन्नति करोगे। मेरे मित्रों, आज हम में से कई लोग मसीह में नया जन्म पाकर भी शिशु हैं, परंतु इस पुस्तक का लेखक हमें कहता है कि हमें शिशु ही नहीं बने रहना है, परंतु उन्नति करना है। प्रश्न है, क्या आप उन्नति कर रहे हैं? क्या आप उद्धार पा चुके हैं? क्या आपका नया जन्म हो गया है? क्या आप घास फूस पर रद्दा रख रहे हैं, या आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं? मेरे प्रियो, आज इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु नाम पूरे करता सब अरमान, सुमिरन कर मन यीशु नाम पूरे कर